राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम विश्वदानंदन जय ब्रज जन श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री श्री गौनताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। तो जैसा आप लोगों को बताया गया है, राधाष्टमी का उत्सव बहुत निकट है, इसलिए हम श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ सुनेंगे। तो कई शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का वर्णन हुआ है। आज हम सुन रहे हैं ब्रह्म विवर्त पुराण से, और इसमें शिवजी सुना रहे हैं। यहाँ शिव मंदिर भी है। तो शिवजी जो है पार्वती को सुना रहे हैं राधा रानी की महिमा। लेकिन शुरू में कुछ दूसरे चर्चा है, दूसरे व्यक्तियों की चर्चा है, लेकिन फिर आती चर्चा शिव और पार्वती की बीच में है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, इसमें इतना विस्तृत वर्णन है कि हमारे पास समय ही नहीं इतना, तो जितना समय होगा उतना हम लोग सुनेंगे इसके बारे में। पहले नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी प्रश्न कर रहे हैं किन से? नारायण ऋषि से। नारायण ऋषि जानते हैं? नारायण ऋषि है गंधमादन पर्वत पर जो तपस्या करते हैं, नर नारायण है ना। तो नर नारायण में से जो नारायण है ना, वो जो है सुना रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं नारद जी बोले कि हे महाभाग मुनिवर नारायण, मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो मुनिवर श्री नारायण ने कहा कि पूर्व काल की बात है, कैलाश शिखर पर शंकर जी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सिद्धों के स्वामी हैं, सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। कौन सुना रहे हैं? नारायण ऋषि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। और कहाँ की बात कर रहे हैं? कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं। कैलाश शिखर पर मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। शिव जी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था, मंद मुस्कान की छटा छाई थी। चार कुमारों को श्री कृष्ण के रास उत्सव का जो है आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में चार कुमारों की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब वर्णन समाप्त हुआ और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पार्वती का प्रश्न तो बहुत देर से था, लेकिन जब प्रश्न तभी करें जब अवसर मिलेगा। तो पार्वती को जब अवसर मिला तो रास लीला जब समाप्त हुई तो पार्वती को अवसर मिला। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी महादेव जी के सामने राधिका उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुख कमल से पंचरात्र आदि आगम सुने। नीति शास्त्र और योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के तंत्र शास्त्र और श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र सुने है? अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। कौन बोल रहे हैं? पार्वती जी बोल रहे हैं। श्रुति में कन्नड़ शाखा के भीतर श्री राधा का गुणगान संक्षेप से हुआ है, उसे मैंने आपके मुख से सुना। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महिमा सुनाइए। पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था क्या कि राधा का गुणगान सुनाइए, लेकिन फिर आपने उसको नहीं सुनाया। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव और उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजन और स्तोत्र कवच आराधन विधि का वर्णन कीजिए। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपके आपने आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था, जब आपने कहा कि मैं सुना रहा हूँ और आपने नहीं सुनाया। तो डर रहे हैं पार्वती जी कि कहीं बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं सुनाया। आपने कहा कि मैं सुनाऊंगा और नहीं सुनाया है, तो आपके वचन में ऐसा जो है कि मिथ्या वचन कैसे हो गया। तो इसने कहा कि आपने जब पहले आपने कहा था मैं सुनाऊंगा, मैंने यही आपसे सुनाने के लिए कहा था, आपने नहीं सुनाया है ना, तो क्यों नहीं सुनाया। पार्वती का उपयुक्त वचन सुनकर शंकर जी ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। क्यों? वो भी जानते हैं कि मैंने कहा था सुनाने के लिए, नहीं सुनाया था, तो इसलिए लज्जा से सिर नीचा कर लिया। ये महापुरुषों का ये जो है लक्षण है कि अपने दोष को तुरंत स्वीकार करते हैं। लज्जा से सिर नीचा कर लिया, अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए। अभी भी बड़ी समस्या आ गई, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया कि मेरे रक्षा कीजिए, मेरे वचन की रक्षा कीजिए ना, और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले। देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था। ये अपनी मजबूरी भी बताना जरूरी है ना, तो शिवजी बता रहे हैं है ना कि मैंने अपनी इच्छा से ऐसा अपने वचन को भंग नहीं किया, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण रोक दिया था, वो हृदय में है मेरे, उन्होंने जो है मुझे रोक दिया और अभी मुझे उन्होंने अनुमति दी है, इसलिए अब सुनाऊंगा। पहले मुझे रोक दिया था उन्होंने है ना, परंतु महेश्वरी तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूप था मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। तो उस समय कुछ और भी लोग रहे होंगे जिनको नहीं सुनना चाहिए, इसलिए हे सती, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। मेरे इष्ट देव कौन है? श्री कृष्ण है, और उनकी वल्लभा श्री राधा अति गोपनीय है, सुखद है और श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। वो सब श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ, मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा भी नहीं जानते, नागराज शेष भी नहीं जानते, सनत कुमार और सनातन देवता धर्म देवेंद्र मुनिन्द्र सिद्धेंद्र को भी इनका ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान कौन सा ज्ञान? राधा जी की महिमा। सुरेश्वरी तुम मुझसे भी बलवान हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को तुम तैयार हो गई थी, अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। ये परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है, नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता। अब जो लोग सुन रहे हैं वो पता नहीं कैसे सुन रहे हैं, सुनना नहीं था, मिलना नहीं था ये। मेरे ईश्वर, श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन का स्मरण करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं। रा मतलब रास है ना, और धा धावन दौड़ती हैं, है उनका उत्साह है, रास में राधा रानी दौड़ती हैं, है तो रा धा धावन, रास में धावन। तो कृष्ण राधा रानी की इस क्रिया का स्मरण करते हैं, रास धावन, रास मंडले धावती, रास मंडल में जो दौड़ती है तो वो है राधा। हे देवी, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति पा लेता है और धा से श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। हरि बोल। रा से मुक्ति मिल गई जिससे आप दौड़ सकेंगे, जब तक आप बंधे हैं तो आप कैसे दौड़ेंगे, तो रा से मुक्ति मिल जाती है और जब धा से आप धावन करते हैं कृष्ण के चरणों की तरफ, तो मुक्ति के बाद काम समाप्त नहीं होता, मुक्ति के बाद दौड़ना पड़ता है। जैसे आप मुक्त हो गए तो आप दौड़ोगे, है ना, तो रा से मुक्ति मिल गई और धा से आप धावन करते हैं, है? रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण मोक्ष, भक्तजन उसे उनसे निर्वाण मुक्ति पाते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। श्री राधा के रोम कूपों से गोपियां प्रकट हुई हैं, श्री कृष्ण के रोम कूपों से संपूर्ण गोप प्रकट हुए हैं। श्री राधा के वाम अंश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, वे ही अन्न की अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं, मतलब राधा रानी से ही। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में निवास करती हैं। राधा रानी की विस्तार है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंश है, तो राधा रानी से ही फिर और विस्तार विस्तार के विस्तार होते हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त लक्ष्मी है जो गृहस्थों के घर घर में वास करती है, वे ही गृह लक्ष्मी है। और श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उनके जो विस्तार है वो अलग अलग स्थान में रहते हैं, लेकिन स्वयं राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उनके विस्तार नहीं है। और श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती हैं, श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, प्राणाधिष्ठात्री देवी चा तस्यैव परमात्मनः। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, वे परम सौभाग्यशालिनी हैं, वे मूल प्रकृति हैं, जैसे आदि पुरुष कृष्ण है तो आदि प्रकृति श्रीमती राधा है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। महाविष्णु जिनकी एक श्वास से है ना ब्रह्मा जी की पूरी आयु है ना, और श्वास से उनके असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जब श्वास जाती तो ब्रह्मांड सब अंदर जाए, ब्रह्मा की आयु बीत जाती है। महाविष्णु, वे महाविष्णु जो है राधा रानी के पुत्र हैं। संत पुरुष माननीय राधा की सदा सेवा करते हैं, उनका चरण कमल ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्तजनों के लिए सदा सुलभ है। देखो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए परम दुर्लभ उनका चरण कमल और भक्तों के लिए सदा सुलभ है ना। इसमें शिवजी एक कथा सुनाते हैं राजा सुयज्ञ की। तो एक राजा सुयज्ञ हैं, तो वे एक ब्राह्मण हैं, उनका नाम है सुतपा, सुतपा नाम के ब्राह्मण से प्रश्न कर रहे हैं। सुतपा नाम के ब्राह्मण स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। सुयज्ञ नाम के राजा हैं, प्रभु समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर वेदों में जो पांच प्रकार की भक्ति बताई गई है ना, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वो उपाय कीजिए, क्योंकि वो सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, जलमय तीर्थ ही तीर्थ है, मतलब स्नान करना जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर सुधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण और प्रतिदिन श्री कृष्ण के प्रसाद को भोजन करने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। कौन कह रहे हैं? राजा सुयज्ञ। किससे बोल रहे हैं? श्रुतपा ब्राह्मण से। आप वैष्णव हैं अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। वैष्णव का मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। आप वैष्णव हैं अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। आप जैसे शिव जी के शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? तो सुदमा बोले, राजन सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वो जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है, और माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। धन देकर के ठग लेती है, है? और कहती है, हाँ देखो तुमको धन दे रही हूँ, कितना तुमको सुख मिलेगा, लेकिन ठग रही है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहे कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह और सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य है, श्री कृष्ण से भी पूजित हैं। राधा रानी श्री कृष्ण से भी पूजित हैं। निर्गुण श्री कृष्ण ध्यान से भी बस में नहीं होने वाले। दुराराध्य, दुराराध्य मतलब मुश्किल आराधना उनकी बहुत कठिन है। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल या अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं। बहुत लंबा रास्ता है, हैं? परंतु सर्वसंपत्त स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है, अतः उनकी सेवा करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। हरि वो शॉर्टकट है ना। तो फिर कश्यप कुल की अग्रणी मुनि श्रेष्ठ शुद्धपा ने श्री राधा की पूजा बताई और ध्यान का उपदेश दिया। किसको किसको सुना? राजा सुयज्ञ को। और कहा, राजन शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। हरि ओम। कैसे? राधा रानी कहाँ पर बैठी हैं? आकाश में रथ में बैठी हैं। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस विमान द्वारा, रत्नों से निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। अरे वो राधा रानी का रथ नीचे जमीन में नहीं आया, बल्कि राजा ने शरीर छोड़ दिया और दिव्य रूप धारण करके राधा रानी के रथ में बैठ करके और गोलोक धाम चला गया। राजा ने बिरजा नदी का दर्शन किया, गोलोक धाम में बिरजा नदी, और सत्श्रृंग पर्वत से घिरे हुए वृंदावन से युक्त रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वो धाम गौओं गोपियों और गोपों से सेवित और रत्नों से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। कौन सा स्थान है वो? गोलोक। और कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से भरा था। आकाश की भांति विस्तार युक्त चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वो था गोलोक धाम। 50 करोड़ योजन, 50 में 12 से गुणा करें तो किलोमीटर बन जाएंगे, तो 12 × 50 600 करोड़ किलोमीटर। वैकुंठ से 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर है गोलोक धाम। ये भी सोचना समाचार, नोट कर, है ना। और शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही स्थिर है। नित्य है, हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं मतलब शिव जी कह रहे हैं, मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु महाविराट धर्म गंगा लक्ष्मी सरस्वती और तुम यानी पार्वती, तुम और विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनत कुमार स्कंद नर नारायण कपिल दक्षिणा यज्ञ योगी वायु वरुण चंद्रमा सूर्य रुद्र अग्नि और कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। इतने नाम जो बताए हैं उन्होंने देखा है गोलोक को। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के हार किरीट और रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। अत्यंत निर्मल पीताम्बर उनका उनके शरीर की शोभा बढ़ाता है। सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। किसके? कृष्ण के। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं, किशोर अवस्था उनकी है ना। ये बताया गया 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, इस अवस्था के बाद उनकी अवस्था आगे नहीं बढ़ती, कृष्ण की आयु बढ़ती आगे है जब अवतार लेते हैं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद उनकी अवस्था नहीं बढ़ती, आयु बढ़ती है लेकिन अवस्था नहीं बढ़ती। नित्य किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन मेघ के समान श्याम, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल के समान मंद हंसी से शोभित मुख है, मनोहर आकृति है, दो भुजाएं और हाथ में मुरली, हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय यानी परम स्वतंत्र हैं, प्रकृति से परे परम ब्रह्म स्वरूप निर्गुण हैं। ध्यान से भी वे बस में आने वाले नहीं हैं, उनकी आराधना बहुत कठिन है, वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल, द्वादश गोपाल कहते हैं, सफेद चमर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़ित रत्न भूषण भूषिता और परम मनोहरी मनोहरणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि देखती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुजग ने इसी रूप में दर्शन किए। किसने दर्शन किए? राजा सुजग ने, राधा रानी की कृपा से ना। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। क्या? चारों वेद है? राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। राग रागिनियां रूप धारण करके और बाजे बजा करके मनोहर संगीत सुनाती थी। हे देवी, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरण कमलों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित रहते हैं और कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दूर्वा अक्षत पारिजात पुष्प और विरजा की निर्मल जल से उनके नित्य अर्घ्य दिया जाता है। प्रसन्न उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न हैं। कौन कौन है? किन के बारे में कहा जाता है? वे सुप्रसन्न हैं किन के? तो थोड़ी देर में सब निकल गया दिमाग से। वे सुप्रसन्न हैं कौन? समस्त कारणों के भी कारण हैं, उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं। सर्वांतरात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्व जीवन है, सर्व आधार है, परम पूज्य है सनातन ब्रह्म ज्योति, सर्व संपत्ति स्वरूप है, संपूर्ण संपदाओं के दाता है, सर्व मंगल रूप है, सर्व मंगल कारण है, सर्व मंगल दाता है और समस्त मंगलों के भी मंगल है। श्री कृष्ण का दर्शन करके ससंकेत हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े, रथ से उतर पड़े। सुन रहे आप लोग कौन रथ से उतर पड़े? है राजा सुयज्ञ रथ से ससंकेत होकर, ससंकेत मतलब कि मेरे से कहीं अपराध ना हो रहा हो, ससंकेत होकर रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व दिया, दासत्व मतलब सेवा, दासत्व दिया, शुभ आशीर्वाद दिया और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की। हरि बोल। और है? अभिचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हम लोग मतलब शिव जी कह रहे हैं, जो हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। तब श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गए। राधा रानी कहाँ से उतरी? रथ से उतरी। और रथ कहाँ पर था? आकाश में। और रथ से उतर करके कहाँ पर आ गई? कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। ये मंदिर है राधा रानी का, कृष्ण का वक्ष स्थल है। उनके अत्यंत प्रिया गोपियां सफेद चमन लिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं कि नहीं? राधा कृष्ण, राधा माधव, पहले राधा का नाम, जिसके विपरीत उच्चारण करते या श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य पर्यंत नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित रोगी होते हैं जो राधा की निंदा करें, है ना? इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वे सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णुमाया मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली हैं, है ना? हाँ, उनकी विस्तार है, राधा रानी की ही सब विस्तार है, इसलिए उनको भी कह सकते हैं विष्णु माया। और फिर वो माया भी जो है मतलब योग माया भी है और महामाया भी है, इस तरह से भी होती है। राधा रानी की स्तुति की कुछ श्लोक हैं इसमें, तो मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसमें स्तुति जो है बताई गई है राधा रानी, साम वेद उक्त रीति से जो है परिहार नामक स्तुति है ये। इसके मंत्र ये हैं, इस प्रकार से हैं। हे राधे, श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो और उन्हें प्राणों से अधिक प्यारी हो और शुभ स्वरूपा हो। तम देवी जगताम माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधि देवी चा कृष्ण प्राणाधिका शुभा। कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगल दायिनी राधे तुम्हें नमस्कार है। कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्य रूपिणी कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। अद्य मे सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम पूजितासि मया साचा या श्री कृष्णेन पूजिता। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं वही रासमंडल में राजेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्णप्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक वन में क्रीड़ा, कृष्ण वक्षसि आराधा सर्व सौभाग्य संयुता राशे राशेश्वरी रूपा वृंदा वृंदा वने वने कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने तुया चंपावती कृष्ण संगे कृष्णा क्रीडा चंपक कानने। चंद्रवन में चंद्रावली सतश्रृंग पर्वत पर सती बिरजा तटवर्ती वन में बिरजा दर्पहंत्री चंद्रावली चंद्रवने सतश्रृंगे सती चा विरजा दर्पहंत्री चा विरजा तट कानने। पद्मवन में पद्मावती कृष्ण सरोवर में कृष्णा कुंज कुटीर में भद्रा काम्यक वन में काम्या पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्ण सरोवरे भद्रा कुंज कुटीरे चा काम्या वे काम्यके वने। वैकुंठ में महालक्ष्मी नारायण के हृदय में वाणी क्षीर सागर में सिंधु कन्या मर्त लोक में हरि प्रिया लक्ष्मी। वैकुंठे च महालक्ष्मी वाणी नारायण ओरसी क्षीरोदे सिंधु कन्या चा मर्त्ये लक्ष्मी हरि प्रिया। संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर के वक्षस्थल में सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। सर्व स्वर्गे स्वर्ग लक्ष्मी देव दुख विनाशिनी सनातनी विष्णु माया दुर्गा शंकर वक्षसी। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मा जी के वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। सावित्री वेद माता चा कलिया ब्रह्म वक्षसे कलिया धर्म पत्नी तुम नर नारायण प्रसू। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भवन पावनी गंगा हो। गोपियां तुम्हारे रोम कूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति तुम्हारी कला की अंश रूपा हैं। कलिया तुलसी तुम चा गंगा भवन पावनी लोम कूपोद भवा गोप्या कलांसा रोहिणी रति। सतरूपा सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपणी है। देव माता हरि प्रिया अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है। कला कलांश रूपा चा शत्रुपा सची दिति अदितिर देव माता चा तत्कलांसा हरि प्रिया। हे देवी देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजिते तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। देव्यश्च मुनिपत्न्यभ्य देव्यश्च मुनिपत्न्यश्च तत्कला कलया शुभे कृष्ण भक्तिम कृष्ण दास्यम देहि मे कृष्ण पूजिते। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके कवच का पाठ करें। ये प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। एवं कृत्वा परिहारम स्तुत्वा च कवचम पठेन पुराकृतम स्तोत्रमेतन भक्तिदास्यप्रदम शुभम। ये प्रकृति खंड के अध्याय 55 में जो है श्लोक संख्या 44 से लेकर 57 तक की ये स्तुति है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है माला फंस गई। वो जीवन मुक्त और पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हरि बोल। एक बात श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्धान हो गई। अब यहाँ श्री राधा रानी का महात्म्य और विशेष बताया जा रहा है। उन्होंने मान किया और कृष्ण के समीप से अंतर्धान हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए, भार्या रहित हो गए, उपद्रव ग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। किन्होंने? सब देवताओं, ब्रह्मा विष्णु शिव मिलाकर के सब देवताओं। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। तो कृष्ण संतुष्ट हुए तो ठीक है, मैं अब राधा को मनाता हूँ। तो स्नान किया और फिर राधा की पूजा की और स्तुति की। अब श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? क्या यही तुम्हारा प्रेम है मेरे से? कृष्ण पूछ रहे हैं, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी इसी प्रकार की प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छल था वो आज अच्छी तरह प्रकट हो गया है। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी, वे अब कहाँ चली गई? कृष्ण कह रहे, मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिया है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। ये तुम्हारी बात सत्य नहीं है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ ना हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता हो, मूल प्रकृति ईश्वरी हो, अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। तुम तो निर्गुणा हो, ज्योति पुंज। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्हें पुण्य रूपा तुलसी हो, भुवन पावनी गंगा हो, ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम्हें अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम्हें समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं सब हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं है सब हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर ब्रह्मा जी वेदों के कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम्हें दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि की रक्षा करते हैं। शिव जी तुम्हें ही गंगा के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ सब के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक भी मूक हो जाता है, वो पुराने सुना सकता, पौराणिक भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से खड़ा बनाता है, क्या कुम्हार मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति के साथ ही मैं सृष्टि रचना करता हूँ। तो मैं कुम्हार हूँ, तुम मिट्टी हो, और पूरी सृष्टि घड़ा है ना। तो तुम्हारे बिना जो है मैं सृष्टि नहीं बना सकता, जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। तो तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम्हें सर्वशक्ति स्वरूप हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहे कर सकते हो, तुम्हारे बिना अग्नि में जलाने की सामर्थ्य नहीं। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो, तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभाव हो, तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं हो सकते। प्रिय तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता स्त्री संपन्न हो गए और शक्ति संपन्न हो गए, है ना। देखो ये सब जो है महिमा है। तो हे देवी सारा जगत प्रसन्न हो गया श्री राधा की कृपा से, गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वो श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हरि बोल। जो प्रद्युम्न भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो भव बंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। तो मैंने इतना ही सोचा था आप लोगों को पढ़ करके सुनाने के लिए। वैसे है तो बहुत चर्चा, लेकिन अब आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो या प्रश्न हो। हाँ जी बोलिए। जो सुनता है तो पवित्र तो होगा ही, है वो ही पवित्र होगा, है ना। हाँ जी। नहीं नहीं, भारतीय भारत का अर्थ क्या है? भारत जब कहा जाता है भारतीय, तो भारतीय का मतलब है वो स्थान जो कर्म क्षेत्र होता है। भारत जो है कर्म क्षेत्र है। भारत के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, भारत वर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं, ये जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप 9 वर्ष हैं। तो जो भारत वर्ष है, इसमें ही सत्ययुग त्रेता द्वापर कली ये 4 युगों का परिवर्तन होता है। जो दूसरे वर्ष हैं उनमें तो त्रेता युग के समान ही समय रहता है और आयु 10,000 साल की होती है। वो इस वर्ष हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय जो पृथ्वी का जो नक्शा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वैसा वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो मतलब वो जमीन थी ही नहीं, जमीन बाद में निकली समुद्र से ऊपर, ये जमीन थी ही नहीं। लेकिन जो जमीन है वो दिखाई नहीं पड़ रही। वास्तव में जो जमीन है, जो भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं, वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो सब जो है भोग भूमि है, वो कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। स्वर्ग से जो अपने पुण्य क्षीण करके जब नीचे आते हैं, तो भारतवर्ष के अलावा दूसरे वर्षों में जन्म लेते हैं और वहाँ अपने शेष पुण्यों का भोग करते हैं। तो वो सब भोग भूमि है ना। तो भारतीय का मतलब ये कि उनको ही भारत में ही उन्हें जो है ये अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने कुछ नए कर्म करते हैं और नए कर्म करके अपनी दुर्गति भी कर सकते हैं, अपनी सदगति भी कर सकते हैं। आपका प्रश्न। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने मना किया था कि हम लोग उनको ना सुने। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो उन सबको पढ़ करके सुन करके भी हम जो है उत्साहित होते हैं कि अगर किसी को ये सब चीज़ें मिली तो मुझे कृष्ण भक्ति भी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी जो है उत्साहवर्धक बन जाता है। जो कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति जब हो जाती है, तो आप अन्य शास्त्रों की भी बातें सुनते हैं और अन्य बातें भी सुनते हैं, तो भी आप कृष्ण के संबंध में आप फिर उनको लेते हैं। तो आप कृष्ण के संबंध में ले सकते हैं कि अगर उसको जो है ये फल प्राप्त हुआ तो मुझे जो है कृष्ण भक्ति का भी फल प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो है कोई फल अगर तुरंत मिलता है तो उससे कम से कम ये तो पता चलता है कि भाई हाँ इसमें कुछ शक्ति है, कुछ मिल तो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन सुनना भी चाहिए, लेकिन वो हम कृष्ण भक्तों के संग में अगर सुनते हैं तो उन सब चीज़ों को हम सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अगर राज्य भी मिल जाता है, संपत्ति भी मिल जाती है, स्त्री भी मिल जाती है, तो वे इन सब चीज़ों का प्रयोग भी कृष्ण की सेवा में करते हैं, तो वो भी कृष्ण भक्ति में उनकी बढ़ोतरी होती है। अगर वो स्वर्ग में भी जाते हैं तो वो स्वर्ग में भी जो है वो कृष्ण की भक्ति में उनकी उन्नति होती है। आप सुन रहे हैं, उनको भोगों की भी प्राप्ति होती है तो भोगों में भी जो है वो कृष्ण की भक्ति का ही अभ्यास करते हैं। भोगों को देख करके भी वो देखते हैं कि कृष्ण की कृपा से मुझे ये भोग प्राप्त हुए हैं, तो उसमें भी वो कृष्ण की कृपा ही देखते हैं। ये भोगों में हैं वो कृष्ण को नहीं भूलते, ठीक है ना। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसी चीज़ है कि फिर वो किसी भी चीज़ की बाधा होती नहीं है, हर चीज़ उसके कृष्ण भक्ति में सहायक बन जाती है। इसलिए फिर ये कथाएं आपकी भक्ति में सहायक होंगी, बाधक नहीं होंगी। सुख में भी उसको जो है कृष्ण की भक्ति का उत्साह मिलता है और दुख में भी उसको कृष्ण की भक्ति में उत्साह मिलता है, तो हर चीज उसकी कृष्ण की भक्ति में सहायक होता है, किसी भी चीज से उसको बाधा नहीं होती, ठीक है ना। कृष्ण दोनों तरह के पर्पज हैं। कुछ लोग अगर जो है वो भोग चाहते हैं तो कम से कम अच्छा है कि भाई इस विधि से अगर वो भोग प्राप्त करें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि विकर्म करते हैं। आजकल लोग शास्त्रों को नहीं मानते है ना, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और जो है सुख भोगने की चेष्टा करते हैं, तो अगला जन्म तो है ही है, अगला जीवन तो है ही है, तो नरक में जाएंगे, तो उससे अच्छा है विकर्मी से अच्छा है कर्मी। आज की शिक्षा है वो तो लोगों को विकर्म सिखा रही है, नरक में जाने का रास्ता कि तुम भोगों को भोगो, शास्त्र विधि को छोड़ करके भोगों को भोगो, नरक में जाए। विकर्मी से अच्छा कर्मी, कर्मी का मतलब है कि वो भोगों को भोगना चाहते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार भोगना चाहता है, हैं तो कम से कम स्वर्ग लोग जाएगा है, तो वो उससे तो अच्छा है कि स्वर्ग जाएगा वो, तो शास्त्र विधि से वो स्वर्ग सुख भोगना चाहता है। इसमें बहुत विस्तार पूर्वक कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने जो है राधा रानी के साथ विहार किया और फिर जब राधा रानी गर्भवती हो गई तो उन्होंने एक जो है बालक को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया या एक अंडा जन्म दिया, लेकिन उन्होंने जो है उससे बाधा ही पड़ रही थी, कृष्ण के साथ संगति में उनको बाधा पड़ रही थी, तो उन्होंने उसको जल में डाल दिया और वो जल कारण समुद्र जो जल है वो भी उनके पसीने की बूंदों से बना, राधा रानी के पसीने की बूंदों से कारण समुद्र बना, उसी में उस बालक को डाल दिया या अंडे को डाल दिया, तो वही बालक जो है महाविष्णु बना। और कृष्ण ने फिर राधा रानी को जो है फिर उसको साप कहा गया कि साप दिया, तो साप यही दिया कि आगे से तुम्हें पुत्र कभी नहीं प्राप्त होगा और तुम्हारा यौवन स्थिर रहेगा और पति में ही तुम्हारी हमेशा रुचि बढ़ती जाएगी। तो राधा रानी की जो रुचि है वो कृष्ण में है, पुत्र में कोई रुचि नहीं कि उनको पुत्र प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त होते हैं स्त्री को तो फिर उसका जो पति के प्रति फिर उसका जो रुचि है वो तो फिर पुत्रों की तरफ बढ़ जाती है। तो राधा रानी की जो एकमात्र जो रुचि है वो कृष्ण में है, तो वो पुत्र नहीं पाना चाहते हैं, तो इसलिए राधा रानी जो है कोई पुत्र नहीं उत्पन्न करती हैं और उनके अंश भूता जो लक्ष्मी है वो भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसी भगवान विष्णु ने जब पुत्र को जन्म दिया तो अपनी नाभि से जन्म दिया, क्योंकि वो लक्ष्मी जी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, तो राधा रानी के कारण ही ऐसा बताया है जी। हाँ, इस तरह से बताया गया। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती राधा कथा महामहोत्सव की जगत गुरु शील प्रभुपाद की।